नैतिक तर्क। इस तर्क का प्रतिपादन में सर्वप्रथम मिल का नाम है। उसके अनुसार मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य चरित्र और शक्तियों का उच्चतम और संतुलित विकास है। इसके लिए आत्मविश्वास साहस की आवश्यकता होती है, जिन्हें व्यक्ति का स्वतंत्रता के आधार पर प्राप्त हो सकता है। और राज्य को मानव जीवन में कम से कम हस्तक्षेप आवश्यक है। नैतिक विकास मानव जीवन का आंतरिक पहलू है और व्यक्ति के जीवन के विभिन्न आंतरिक प्रेरणाओं का विकास तभी संभव है जब उसे स्वतंत्र प्रतियोगिता का अधिकार मिले। मिल के शब्दों में अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए मनुष्य का चरित्र समुन्नत होता है और मानवता की प्रगति होती है। राज्य द्वारा किया गया कार्य व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को समाप्त कर देता है, उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाता है और चरित्र को कुंठित करता है। दूसरा, आर्थिक तर्क, जिसका प्रतिपादन क्वींस ने, एडम स्मिथ, रिमाल्थस, रिकार्डो आदि द्वारा किया गया। इनमें कहा गया है कि स्वतंत्र प्रतियोगिता और निजी साहस उत्पादन में वृद्धि और कार्यकुशलता बढ़ाते हैं, इसलिए आर्थिक विकास करते हैं। इसमें राज्य का एकदम हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अनियंत्रित प्रतियोगिता उत्पादकों को कम से कम मूल्य पर वस्तुओं का उत्पादन करने योग्य, उपभोक्ता को कम से कम भाव पर वस्तु खरीदने योग्य और श्रमिकों को अधिकतम पारिश्रमिक कमाने योग्य बनाता है। एडम स्मिथ आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का महत्तम समर्थक है। उसका कहना है कि व्यापार और उद्योग व्यक्तिगत हाथों में भी विकास कर सकता है। राज्य को इसमें एकदम हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य को इसे दूर ही रहना चाहिए। उसका सिर्फ इतना कार्य होना चाहिए कि छल और विश्वासघात से लोगों की रक्षा करे। तीसरा, प्राणी वैज्ञानिक तर्क। इस तर्क का प्रमुख प्रतिपादक हॉबर्ट स्पेंसर है। स्पेंसर के अनुसार प्रकृति के अंतर्गत अनवरत रूप से जीवन संघर्ष और योग्यतम के विजय का प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया को ऊपर से देखने पर निर्दयी प्रतीत होता है, परंतु संपूर्ण मानव सृष्टि के हित में है। योग्यतम के विजय के सिद्धांत को मानव समाज पर लागू करते हुए कहते हैं, विकास और प्रकृति का स्वाभाविक मार्ग यह है कि दिन दुर्बल, अयोग्य और अशक्त व्यक्ति का जीवन का अंत हो जाए, ताकि उनके जीवन पर किए जाने वाले साधनों का उपयोग समर्थ और योग्य व्यक्तियों पर किया जा सके और मानव जाति का लाभ हो। स्पेंसर, यद्यपि ऊपर से देखने पर यह अत्यंत अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है और विधवाओं और अनाथों को जीवन और मृत्यु के संघर्ष के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, परंतु संपूर्ण मानव जीवन के कल्याण का विचार रखते हुए यह अत्यंत लाभप्रद है। यदि हमें एक संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का हमें एक योग्य, सुदृढ़ और सशक्त संस्कृति का विकास करना है, तो हम मनुष्यों को उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, ताकि शक्तिशाली व्यक्तियों की उन्नति और अयोग्य व्यक्तियों की समाप्ति हो सके। सम्राट भी प्राणी वैज्ञानिक तर्क का समर्थन करता है और कहते हैं कि हमारे सामने दो विकल्प हैं। प्रथम, स्वतंत्रता, समता और योग्यता का जीवित रहना, तथा अस्वतंत्रता, असमता और अयोग्य व्यक्तियों का जीवित रहना। प्रथम विकल्प से समाज आगे बढ़ता और दूसरे से पीछे। चौथा, राज्य की अयोग्यता तर्क का तर्क। व्यक्तिवादियों का तर्क है कि राज्य आर्थिक, सामाजिक आदि कार्यों के करने की न तो योग्यता रखता है और न ही सामर्थ्य। राज्य कार्यों की सफलता राज्य कर्मचारियों पर निर्भर करती है और इस कर्मचारियों को राज्य के कार्यों से कोई निजी हित न होने के कारण उनकी सफलता में कोई विशेष रुचि नहीं लेते। एक ओर सरकारी उद्योगों या व्यवसायों का प्रबंध निजी उद्योगों के प्रबंध की अपेक्षा महंगा पड़ता है और दूसरी ओर सरकारी दायित्व भी निश्चित नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य किसी का कार्य नहीं होता है और नौकरशाही की सभी बुराइयां आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। इस संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, राज्य को प्रत्येक अतिरिक्त कार्य सौंपने का अर्थ अतिशय भार से लदी हुई संस्था पर नया बोझ डालना है। इसका परिणाम यह होता है कि बहुमत के कार्य अनुचित ढंग से किए जाते हैं और बहुत से कार्य इसलिए नहीं हो पाते हैं कि सरकार देख किए बिना उन्हें कर ही नहीं सकती। पांचवा, मनोवैज्ञानिक तर्क। मनोवैज्ञानिक आधार पर यह कहा जाता है कि संपत्ति का स्वामी होना मानव स्वभाव की एक आधारभूत प्रवृत्ति है और इसके आधार पर व्यक्ति अधिक से अधिक उत्पादन करने और लाभ पाने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में मनुष्य में प्रतिस्पर्धा समता के लिए नहीं अपितु एक दूसरे से बढ़ने के लिए होती है और प्रतिस्पर्धा पर ही विकास टिका होता है। ऐसी स्थिति में सरकार अपनी नीति द्वारा असमान क्षमता और परिश्रम करने वाले व्यक्तियों से धन का समान वितरण कर देगी तो मनुष्य में प्रोत्साहन का अभाव होगा और वे विकास करना छोड़ देंगे, जिससे स्वाभाविक विकास से और स्वाभाविक नेताओं से समाज को वंचित होना पड़ेगा। परिश्रमी, मितवई, सूझवान और आविष्कारक मनुष्य व्यक्तिवादी समाज का ही परिणाम हो सकते हैं। छठा, अनुभव का तर्क। इतिहास मानव अनुभवों की खान है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप सदैव ही मूर्खतापूर्ण रहा है। जब कभी राज्य ने वस्तुओं के मूल्य, मजदूरी की दर, आयात निर्यात पर रोक लगाई है, यह पूर्णतः असफल रहा है। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण फ्रांस व अन्य यूरोपियन देशों के ब्रिटिश माल के बहिष्कार का प्रयत्न था। भारत में अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक की आर्थिक नीति भी असफल रही है। अन्य भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। बगल के अनुसार राज्य के अधिकारी इस प्राचीन सिद्धांत का आश्रय लेकर कि उसकी सहायता बिना व्यापार और उद्योग धंधे की उन्नति नहीं हो सकती, बराबर गलती करते रहे हैं। वे समाज पर जुल्म लादते रहे हैं और व्यर्थ के प्रतिबंधों द्वारा व्यापार की अवनति करते रहे हैं। इन अंकुशों के रहते हुए सभ्यता का विकास नहीं हो सकता है। इस प्रकार व्यक्तिवादी कहता है कि अनुभव के आधार पर भी राज्य को व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप प्राप्त नहीं होना चाहिए। व्यक्तिवाद की आलोचना। व्यक्तिवाद के समर्थन में जो उपयुक्त तर्क दिए गए हैं आलोचकों द्वारा उनकी कटु आलोचना की गई है। पहला, राज्य एक बुराई नहीं है। व्यक्तिवादी राज्य को एक बुराई मानते हैं, वरन राज्य बुराई न होकर एक निश्चित सकारात्मक अच्छाई है। राज्य का विकास शक्ति और पापों के कारण नहीं, वरन मानव स्वभाव की मूल आवश्यकताओं के कारण हुई है। राज्य आज की प्रथम आवश्यकता होती है। यदि राज्य कभी बुराई होता तो यह कब का समाप्त हो गया होगा। इस संबंध में अरस्तु का कथन ही सत्य है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सज्जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। और वर्ग भी कहता है, राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, सभी कार्यों में साझेदारी है और सभी सारे गुण में पूर्णता में साझेदारी है। अगर राज्य नहीं होता तो आज कई लोक कल्याणकारी कार्य नहीं होते। अतः व्यक्तिवादियों का यह मानना कि राज्य एक आवश्यक बुराई है गलत है। दूसरा, राज्य कार्य और मानव स्वतंत्रता का परस्पर विरोधी नहीं है। व्यक्तिवादी की स्वतंत्रता संबंधी सकारात्मक दृष्टिकोण नितांत भ्रमपूर्ण है और नियंत्रण के अभाव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं स्वेच्छाचारिता हो जाएगी। और राज्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को दूसरे से रक्षा करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में भी राज्य का होना आवश्यक है। ऋचि ने कहा है, व्यक्तिवादी स्वतंत्रता तथा राज्य के हस्तक्षेप को एक रोकर बही के देना पावना दो विरोधी पक्ष मान बैठने हैं, जिसके कारण एक पक्ष की वृद्धि उन्हें आवश्यक रूप से दूसरे पक्ष की कमी महसूस होती है। वस्तुतः राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते, वरन उसकी रक्षा और उसमें वृद्धि करते हैं। यहीं पे व्यक्तिवादी विचारक भूल करते हैं। तीसरा, मानवीय कार्यों का आत्मविषयक और परविषयक में विभाजन अव्यवहारिक और अनुचित है। व्यक्ति का कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जिसका निरपेक्ष रूप से समाज पे कोई प्रभाव न पड़े। अतः स्वविषयक और परविषयक कार्यों में व्यक्ति के कार्यों का विभाजन हो ही नहीं सकता है। यदि एक व्यक्ति समाज में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस पर समाज पर पड़ता ही है उसका प्रभाव। ऋचि के अनुसार व्यक्ति के विचार भी पूर्णतः आत्मविषयक नहीं होते हैं और इसलिए उन मिल का विभाजन नितांत अस्वीकार्य है। बारकर, व्यक्ति और समाज के विरोधी कल्पना करने के कारण उसका स्वतंत्रता का विचार सही नहीं है। चौथा, समाज संबंधी दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। व्यक्तिवाद का बहुत बड़ा दोष समाज के संबंध में उसकी धारणा है। व्यक्तिवादी समाज को ऐसे व्यक्तियों का समूह मानते हैं जो प्रकृति से स्वतंत्र, स्वयं में परिपूर्ण और सभी गुणों, शक्तियों और अधिकारों से संपन्न होते हैं। किंतु समाजशास्त्र, इतिहास और अनुभव के आधार पर इन धारणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं है। समाज के बिना शारीरिक अंगों का प्रयोग का सही तरीका, चिंता शक्ति, भाषा, विचार सब कुछ समाज से ही सीखता है। इसलिए समाज व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है। जिस प्रकार ईंटों के ढेर को हम मकान नहीं कर सकते, उस प्रकार व्यक्तियों के समूह को हम समाज नहीं कहते हैं। अतः समाज के संबंध में गलत धारणा के कारण व्यक्तिवादी विचारधारा त्रुटिपूर्ण है। पांचवा, मनुष्य सदैव अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं होता है। व्यक्तिवाद का यह मानना कि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है कुछ सीमा तक ठीक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक सीमा में यह गलत नहीं है। आज सामाजिक जीवन इतना जटिल हो गया है कि व्यक्ति अपने हितों का खुद निर्णय कर ही नहीं सकता। उसे अनेक संगठन और समाजों की सदस्यता लेनी पड़ती है और राज्य उसके जीवन को सुखी बनाता है। सत्य तो यह है कि व्यक्ति की बौद्धिक, नैतिक और भौतिक आवश्यकताओं का उसकी अपेक्षा समाज ही बेहतर निर्णायक हो सकता है। सिजविक, लेवेलिए और जेवंस के द्वारा भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं। वास्तव में मनुष्य स्वार्थी होने के कारण भाविक होता है और अनेक बार स्वयं अपने और दूसरे के हित को भूलकर आत्महत्या जैसे घृणित कार्य भी कर बैठता है। सातवां, प्राणी वैज्ञानिक तर्क असंगत और अमानवीय है। यह कहा जाना कि योग्यतम की विजय होती है और हमेशा संघर्ष में सफलता पाने वाला ही जीवित होता है गलत है। राज्य एक मानवीय संस्था है और उसके संबंध में पशु जगत के नियम को शासित नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य योग्यतम व्यक्तियों को जीवित रखने की अपेक्षा अधिकाधिक जीवित व्यक्तियों को जिंदा रहने योग्य बनाना है। आठवां, राज्य की अयोग्यता का तर्क असत्य है। राज्य अयोग्य नहीं है और व्यक्तिवाद केवल उत्पादन का सिद्धांत है। राज्य एक शीशे के मकान में रहता है, इसलिए हम उसके समस्त प्रयासों एवं पूर्ण एवं अपूर्ण असफलताओं को भलीभांति देख लेते हैं। किंतु व्यक्ति का उद्योग अपारदर्शी ईंटों के मकान में रहता है, जिसके कारण जनसाधारण कभी कभी उसके कार्यों को ज्ञान प्राप्त कर सकता है, हैक्सले ने कहा। और लॉर्ड पम्ब्रोक भी कहते हैं कि कभी निजी क्षेत्र की असफलताओं का इस प्रकार संकलन किया जाए तो यह वे किस प्रकार से दिखाई देंगे जाए देखा जाए। व्यक्तिवाद की आर्थिक मान्यताएं दोषपूर्ण है। वह एक ऐसे आधार पर स्वस्थ समाज की स्थापना संभव नहीं कर सकता है। उसका कहना है कि उद्योग और व्यापार में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और सिर्फ अनुबंध की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और उसका अति रहना चाहिए। यह बात वैसी है कि जैसे लंगड़ा को कार चलाने वाले व्यक्ति के बीच दौड़। सीएम जोट कहा कि यद भाव्यम नीति जिस प्रकार आर्थिक क्रिया को प्रोत्साहित करती है, अंधिक्रिया ही कहा जा सकता है। और अर्थव्यवस्था व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था वर्तमान युग में अव्यवहारिक है। यह 18वीं सदी में चाहे कुछ लाभदायक हुआ हो, परंतु वर्तमान समय में वैज्ञानिक आविष्कारों और वितरण के साधनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है। इस सिद्धांत को अपनाने के फलस्वरूप कुछ कुछ गिने चुने पूंजीपति अर्थव्यवस्था पर अधिकार कर लेंगे, जो कि गलत होगा। बात हाँ 13वां, ऐतिहासिक दृष्टि से व्यक्तिवाद के भयंकर परिणाम हुए। इन सैद्धांतिक आलोचना के आधार पर व्यक्तिवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप है कि व्यवहार में व्यक्तिवादी विचारों को अभी तक अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। गोल्डस्मिथ की उक्ति है कि संपत्ति के एकीकरण से मानवता का पतन होता है। निष्कर्ष, इन आलोचनाओं के कुछ सीमा तक सत्य होते हुए भी हम इस बात पर असहमति नहीं प्रकट कर सकते हैं कि व्यक्तिवादी सिद्धांत में सत्य के अंश है, तथा यह व्यक्ति की मूलभूत गरिमा और स्वतंत्रता पर बल देता है। व्यक्ति की आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए व्यक्तिवाद ने अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया है, यह नितांत उचित ही है। पर व्यक्तिवाद के सत्य का अंश होते हुए भी व्यक्तिवाद स्वीकार योग्य विचारधारा नहीं है, यह गलत धारणा पर आधारित है। लास्की के अनुसार व्यक्तिवाद का अर्थ होगा निर्बल स्वास्थ्य, अविकसित बुद्धि, अभागे घर और रिश्तेकार, जिनमें बहुसंख्यक प्राणी मानवीय रुचि का कोई स्रोत नहीं खोज सकते। इसी प्रकार गिरक्राइस्ट ने कहा है, व्यक्तिवाद राजकीय नियंत्रण की बुराइयों को अतिशयोक्ति करता है, और जबकि वह भूल जाता है कि बुरे की अपेक्षा राज्य के अच्छे कार्य से अधिक उदाहरण मिलते हैं। यह मौलिक रूप से व्यक्ति की असत्य धारणा को प्रकट करता है। अंत में यह आधुनिक जीवन की जटिलता के लिए पूर्णतः अनुचित सिद्ध हुआ है। आज विश्व की सभी सरकारें व्यक्तिवाद को छोड़कर समाजवाद और जन कल्याण का विचार ग्रहण करने जा रही है, अतः व्यक्तिवाद एक मृत सिद्धांत है। अब नव व्यक्तिवाद, न्यू इंडिविजुअलिज्म, नव व्यक्तिवाद की उत्पत्ति। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक तीव्र प्रकृति उत्पन्न हुई और व्यक्तिवाद का स्थान आदर्शवादी और समष्टिवादी सिद्धांतों ने ले लिया। किंतु परंपरागत व्यक्तिवाद के विरुद्ध उत्पन्न इस प्रक्रिया ने एक नवीन प्रतिक्रिया को जन्म दिया। इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप 19वीं सदी के व्यक्तिवाद से भिन्न एक नवीन रूप से व्यक्तिवादी विचारधारा फिर से विकसित हुई। इसे ही विचारक नव व्यक्तिवाद या आधुनिक व्यक्तिवाद कहते हैं। प्रोफेसर जोड़ लिखते हैं, व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया ने एक और प्रतिक्रिया पैदा की है। पहिए ने पूरा चक्र घूम लिया है और वर्तमान राज्य से उत्पन्न असंतुष्टि ने व्यक्तिवादी विचारधारा को पुनर्जीवित करने में सहायता की है, जो यदि स्वरूप में नहीं तो आत्मा में अवश्य 19वीं सदी के व्यक्तिवाद से मिलती जुलती है। नव व्यक्तिवाद का अर्थ, नव व्यक्तिवाद और 19वीं सदी के व्यक्तिवाद में अंतर यह है कि जहां 19वीं सदी का व्यक्तिवाद राज्य की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व देता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए राज्य के कार्यों को सीमित करने के पक्ष में था, वहां नव व्यक्तिवाद व्यक्तियों के समुदाय तथा संगठन पर अधिक बल देना चाहता है। वह नव व्यक्तिवादी राज्य को विशेष और उच्च महत्व की संस्था नहीं मानते। जिस प्रकार अन्य संस्थाएं हैं, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन के अन्य विविध पक्षों से संबंध रखती हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य भी एक संस्था है जो इन सब संस्थाओं को एकीकृत रखती है। बारकर ने व्यक्तिवाद के इस आधुनिक रूप पर बल देते हुए कहा है, यदि अब हम व्यक्तिवादी हैं तो हमारा रूप सामुदायिक व्यक्तिवादियों जगह हो गया है, हमारे व्यक्ति समुदाय बनते जा रहे हैं। नव व्यक्तिवाद ने सर्वाधिकारवादियों द्वारा प्रतिपादित राज्य की निरंकुशता को चुनौती दी है और इसने समष्टिवादियों द्वारा प्रतिपादित विचारधारा का भी विरोध किया है कि राज्य के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया जाना चाहिए। नव व्यक्तिवाद के लक्षण निम्न हैं। पहला, नव व्यक्तिवाद उन सभी विचारधाराओं का विरोधी है जो राज्य को शक्तिशाली मानते हैं। उदाहरण के लिए, संप्रभुता की हिगलवादी धारणा का विरोध नव व्यक्तिवाद का प्रमुख लक्षण है। दूसरा, वे लोग समुदायों के महत्व को स्वीकार करते हैं। बारकर के अनुसार आधुनिक समय में व्यक्ति बनाम राज्य नहीं लिया जाता, वरन समुदाय बनाम राज्य लिखा जाता है। केवल राज्य महत्वपूर्ण नहीं है, वरन व्यक्ति के संगठन भी पर्याप्त महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि व्यक्ति का संबंध इन समुदायों से ही अधिक है। मजदूर संघ, वाणिज्य मंडल, स्कूल और चर्च आदि ऐसे समुदाय हैं जिनका हमारे जीवन से प्रत्यक्ष और गंभीर संबंध है, अतः नवे व्यक्तिवाद इन समुदायों को उचित महत्व देने के पक्ष में है। तीसरा, समुदायों का महत्वपूर्ण मानते हुए भी नव व्यक्तिवाद राज्य को कुछ महत्व तो देता ही है। यह राज्यों को समुदायों का समुदाय अथवा संघों का संघ मानता है। राज्य विभिन्न और परस्पर विरोधी समुदायों के बीच एक संयोजक कड़ी है। यह बात राज्य को अन्य समुदायों से अलग एक विशिष्ट रूप प्रदान करती है। नव व्यक्तिवाद का विकास में निम्न तत्वों का हाथ रहा है। ए, वर्तमान समय में मानव जीवन बहुत अधिक विविधतापूर्ण हो गया है। जीवन के बहुपक्षीय हो जाने के कारण मानव समाज में अनेक समुदायों की स्थापना की गई और राज्य की तुलना में उनकी मान्यता तथा महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। मार्कर के शब्दों में, हम राज्य को समान जीवन के लिए व्यक्तियों के समुदाय के रूप में कम और पहले से समान जीवन वाले अनेक समूह में एकीकृत व्यक्तियों के एक अधिक उच्च और व्यापक समान उद्देश्य के लिए संगठित समुदाय के रूप में अधिक देखते हैं। बी, महायुद्धों के समय यूरोप के विभिन्न राज्यों की सरकारों ने अत्यधिक शक्ति ग्रहण कर ली और व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बिल्कुल कुचल दिया। इन सरकारों की मनमानी के परिणाम स्वरूप जनता में सरकार की शक्तियों को सीमित करने की इच्छा उत्पन्न हुई। जोड़ के शब्दों में, युद्ध काल में संघर्षरत राज्यों में राज की गतिविधियों के क्षेत्र का जो विस्तार हुआ, उस विस्तार के कारण राज्य के विरुद्ध एक भावना उत्पन्न हो गई है। सी, बहुत से व्यक्तियों को इस बात पर भी आपत्ति होने लगी कि व्यवहार में प्रजातंत्र बहुमत वर्ग का शासन होता है और यह बहुमत मनमानी करने लगता है। अतः बहुमत की तानाशाही से अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के लिए अनेक बुद्धिमानी व्यक्तियों ने इस बात पर बल दिया कि राज्य की शक्तियों को सीमित किया जाए और इन शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। नवव्यक्तिवादियों के समर्थक। नवव्यक्तिवाद के समर्थक में ग्राहम वालास, नॉर्मन एल्जन, मिस फॉलेट तथा कुछ श्रेणी के समाजवादियों का नाम लिया जाता है। ग्राहम वालास ने अविकसित राज्यों के प्रति अपने अविश्वास को व्यक्त किया है। वह आधुनिक केंद्रित राज्यों का विरोध करता है और प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्मित विधानमंडलों का ही नहीं बल्कि वर्तमान शासन की समस्त व्यवस्था का विरोध करता है। वालास ने कहा है कि निम्न सदन का निर्माण प्रादेशिक प्रतिनिधित्व और उच्च सदन का निर्माण व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाना चाहिए। उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रत्येक संभावित उपाय से अल्पमतों के अधिकार तथा हितों की रक्षा होनी चाहिए। नॉर्मन एंजल अंतर्राष्ट्रवाद का महान समर्थक था और अपनी कृति द ग्रेट इल्यूजन में उस भविष्य की कल्पना प्रस्तुत की है जब सभी राष्ट्रीय राज्य एक आर्थिक आधार पर निर्मित विश्व राज्य में संयुक्त हो जाएंगे। इन विचारों के अनुसार एकता का वास्तविक आधार आर्थिक ही हो सकता है और राष्ट्रीय राज्य एकता के इस मार्ग में पर्थ के अवरोध हैं। इसी प्रकार मिस फॉलेट ने अपनी पुस्तक द न्यू स्टेट में समुदायों की महत्ता का प्रतिपादन किया है। इस विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि नवव्यक्तिवाद बहुलवाद तथा श्रेणी समाजवाद के अत्यंत निकट है। प्राचीन और नवव्यक्तिवाद में निम्न अंतर है। यद्यपि व्यक्तिवाद के दोनों ही रूप राज्य की निरंकुशता और सर्वाधिकारवादिता का विरोध करते हैं, लेकिन इस समानता के होते हुए भी इनमें कुछ विभिन्नताएं अवश्य हैं जिनका उल्लेख निम्न रूप में किया जा सकता है। प्रारंभिक व्यक्तिवाद की इकाई व्यक्ति था और उसके दृष्टिकोण आणविक था, किंतु नवव्यक्तिवाद का दृष्टिकोण संज्ञा है। दूसरा, 19वीं सदी के व्यक्तिवाद की अपेक्षा नवव्यक्तिवाद बहुलवाद तथा श्रेणीमूलक समाजवाद के अधिक निकट है। और तीसरा, 19वीं सदी का व्यक्तिवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए राज्य के कार्यों को सीमित करना चाहता था, जबकि नवव्यक्तिवाद राज्य की शक्तियों को विकेंद्रित कर उन्हें समुदायों को सौंपता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व्यक्तिवाद के संबंध में। राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसकी आलोचनात्मक परीक्षण करें। राज्य व्यक्तियों के सुख की अभिवृद्धि व्यक्तिगत कार्यों में कम हस्तक्षेप करके ही कर सकता है। परीक्षण करें। राज्य के कार्यों की व्यक्तिवादी धारणा की आलोचनात्मक व्याख्या करें। व्यक्तिवाद क्या है, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें। नव व्यक्तिवाद से आप क्या समझते हैं या पुराने व्यक्तिवाद से किस प्रकार भिन्न है। व्यक्तिवाद के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों का संक्षिप्त विवरण करें। यह रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार के द्वारा BA प्रथम वर्ष राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत के पुखराज जैन की पुस्तक के द्वारा सुजीत कुमार के लिए 18 दिसंबर 2007 को किया गया। धन्यवाद।